नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मेरे मसीह ने मुझको बचाया, उसका धन्यवाद। मेरे मसीह ने मुझको बचाया, उसका धन्यवाद।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर में आनंदित हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन को सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूँ, विशेष करके उन सभी मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से नीति वचन नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन से अब तक हमने परमेश्वर की बहुत सारी आशीषों को प्राप्त किया है और मैं आशा करता हूं कि आज भी हम फिर आशीषों को प्राप्त करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। जब आज हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि हर एक जब आपके वचन को सुने अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सके, आपका वचन प्रत्येक जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। विशेष प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तनाव में हैं, बीमारी अवस्था में हैं या पारिवारिक उलझन में पड़े हुए हैं। आप उन सब की सहायता करें, हर एक से बातचीत करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों आइए आप मेरे साथ नीति वचन की पुस्तक उसके 28 अध्याय को निकाल लीजिए। नीति वचन 28 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। मनुष्य चाहे कुछ भी कहे, पाप मनुष्य में भय और आत्मग्लानि उत्पन्न करता है। मैं युवाओं के समूह में पाप के ऊपर चर्चा कर रहा था। उस समूह में एक युवक और युवती एक साथ रह रहे थे। मैंने उसे पाप नहीं कहा था, परंतु बड़ी रोचक बात थी कि वह युवक अपने बचाव में विवाद करने लगा। यदि यह बात ऐसी गंभीर नहीं होती तो बड़े आश्चर्य की बात थी। पाप के विषय चर्चा सुनकर उसका विवेक उसे दोषी ठहराने लगा और वह अपने बचाव में विवाद करने लगा। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं। चोर पुलिस के सायरन को सुन करके भागने लगता है। उस पर किसी ने दोष नहीं लगाया था। यदि वह चुप रहता तो मैं उसका पाप कभी नहीं जान पाता। हमारा चर्चा का विषय पाप था, उसका पाप नहीं। मेरे मित्रों, मनोविज्ञान में एक शब्दावली है, अपराध मनोवृत्ति। हम सब में यह मनोवृत्ति है। मुझे एक मसीही मनोवैज्ञानिक ने कहा, हम सब में अपराध मनोवृत्ति है। जी हाँ, यह हम सब का एक वैसा ही अंश है जैसे हमारा दाहिना हाथ। हम में से कोई भी इससे चाहकर छुटकारा नहीं पा सकता। मनुष्य प्रायः ऐसा करना चाहता है। उस प्रोफेसर ने आगे और भी रोचक बात कही, हम मनोवैज्ञानिक इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर सकते हैं, परंतु इसका निवारण नहीं कर सकते। धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। यदि मनुष्य में अपराध का बोध ना हो तो वह खड़ा होकर बोल सकता है। यदि उसका विवेक शुद्ध है तो वह अन्य मनुष्यों के विचारों और मानसिकताओं से नहीं डरेगा। मेरे मित्रों, हम नीति वचन 28 उसके 9 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। व्यवस्था अर्थात प्रवचन जो सुलेमान के समय तक लिखा गया था, पंच ग्रंथ, यहोशू, न्यायों और भजन। परमेश्वर हमसे यहाँ जो कहना चाहता है वह है, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी वाणी सुने तो पहले आपको उसकी वाणी सुनना होगा। उसने स्पष्ट कहा है कि वह अभक्तों की वाणी नहीं सुनता है। एक छोटी लड़की बीमार थी। उसका पिता भावनात्मक होकर परमेश्वर से उसकी चंगाई की प्रार्थना करता है। मैं कहूंगा कि उसे एक धर्मी जन को बुलाकर प्रार्थना करवानी थी, क्योंकि परमेश्वर अधर्मी की प्रार्थना नहीं सुनता है। पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें धर्मी जन पर लगी होती है और उसके कान उनकी प्रार्थना सुनते हैं, परंतु अधर्मियों का वह विरोध करता है। यहाँ लिखा है कि अधर्मी की प्रार्थना परमेश्वर के निकट घृणित है। नीति वचन 28 के 10 पद में लिखा है, जो सीधे लोगों को भटका कर कुमार्ग पर ले जाता है वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। यह परमेश्वर का नियम है जो संसार में काम करता है। परमेश्वर के वचन में आप इसे बार बार देखेंगे। उदाहरण के लिए, दाऊद के पाप ने उसके परिवार में बदनामी और निंदा का स्थान बनाया। नीति वचन 28 के 11 पद में लिखा है, धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म समझ लेता है। धन घमंड और छल उत्पन्न करता है। ये साथ साथ चलते हैं। आप धनवानों की गवाहियां सुनते होंगे। क्या एक गरीब विश्वासी से गवाही देने को कहा जाता है? परमेश्वर का वचन कहता है, धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु धर्मी कंगाल उसका मर्म समझ लेता है। संसार में कंगाल परंतु विश्वास में धनी धनवानों की गवाही सुनकर समझ लेता है कि वे खोखले शब्द हैं, उनमें सच्चाई नहीं है। सच हो तो तो भी उनमें आत्मिक बातों की समझ नहीं होती है। मैं ऐसे एक स्थान पर गया हूँ और मैंने देखा कि सच्ची आत्मिक बुद्धि रखने वाले गवाहियां सुनकर सिर झुकाए हुए थे। यह एक व्यवहारिक नीति वचन है, जी हाँ, जिसे प्रायः अनदेखा किया जाता है। नीति वचन 28 के 13 पद में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यह एक अति उत्तम नीति वचन है। आज विश्वासियों में यह एक आम अभ्यास है कि अपने पापों को छिपाएं। कलिसियाओं में पाप के कैंसर पर लगा बैंडेड बहुतायत से देखने को मिलता है। मनुष्य को पाप की चर्चा करना अच्छा ही नहीं लगता है, और सच तो यह है कि वे इसके अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते हैं। वे मन को समझाते हैं कि वे बहुत अच्छे हैं, परंतु यह वचन हमसे कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाती है। मेरे मित्रों, यही बात यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 9 पद में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कौन? प्रभु यीशु। यह पाप के सार्वजनिक अंगीकार के बारे में नहीं कहा गया है। पाप स्वीकारन आपके और परमेश्वर के मध्य है, और पाप का निवारण आवश्यक है। अपने मित्रों में निष्पाप दिखना आपकी बड़ी भूल है। यदि आप अपने पापों को स्वीकार करके उनका त्याग कर दें तो आप पर दया की जाएगी। यह कैसी महान बात है। नीति वचन 28 के 14 पद में लिखा है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। परमेश्वर का भय मानना यही है। आपको नीति वचन 9 उसके 10 पद स्मरण होगा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के सामने हमारे मन सदैव खुले रहें। यह मन कठोर करने के विपरीत है। परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य वह है जो परमेश्वर की वाणी सुनता है। जी हाँ, वह परमेश्वर को ग्रहण योग्य जीवन रखता है। वह परमेश्वर के समक्ष दीन बना रहता है। वह अपनी दुर्बलता के बोध परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता के साथ जीवन निर्वाह करता है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। इसका अर्थ यही है। मुझे पत्रों में लिखा जाता है, आप कलीसिया के सदस्यों में दोष निकालते हैं। आप कलीसिया के सदस्यों की आलोचना करते हैं। क्या आपके पास उन्हें प्रोत्साहित करने को कुछ नहीं है? क्या मैं कह सकता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार करता हूं? हम अभक्ति के युग में वास करते हैं। स्वदेशी पास्टर और विदेशों में सेवारत परमेश्वर के सेवक भी इससे सहमत है कि हम कलीसिया में अभक्ति देखते हैं। मैं विश्वासियों के प्रोत्साहन के पक्ष में हूँ और परमेश्वर का वचन सच्चे विश्वासी के प्रोत्साहन के लिए बहुत कुछ कहता है। मैं स्थानीय कलीसिया की ओर ध्यान आकर्षित करता हूँ। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि उसका अभिप्राय उनसे है जो केवल मसीही होने का दिखावा करते हैं। मेरा मानना है कि पूर्व चेतावनी, पूर्व सावधानी यही है। कलीसिया के भीतर या बाहर मसीही जनों के आचरण से अनेक विश्वासी निराश हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे धर्म त्याग करते हैं। एक विद्रोही युवक ने मुझसे कहा, मैंने धर्म का त्याग कर दिया है। उस युवक की पृष्ठभूमि जानते हुए मैं उससे कहना चाहता था, मैं आपको दोष नहीं देता, परंतु उससे यह तो नहीं कह पाया, परंतु यह अवश्य कहा, कलीसिया में अनेक पवित्र जन हैं जो दिखाई नहीं देते, इसलिए आपकी दृष्टि उन पर नहीं पड़ी। वे ऐसे मनुष्य हैं जिनके साथ आप मन भावन संगति रख सकते हैं। मुझे यह बात इसलिए कहना पड़ा कि आपको यह भ्रम ना हो कि मैं आज की कलीसिया का बहुत बड़ा आलोचक हूँ। मेरे प्रियो, सच तो यह है कि इस नीति वचन का लिखने वाला हम में से एक को भी नहीं छोड़ता है। अधिकांश नीति वचन हम पर ऐसे प्रासंगिक हैं जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं। नीति वचन 28 उसके 17 पद में लिखा है, जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी हो वह भागकर गड्ढे में गिरेगा, कोई उसको न रोकेगा। जो मनुष्य एक भयानक अपराध का दोषी हो उसे अपने विवेक का बोझ उठाना ही होगा। अंत में वह आत्महत्या करने पर बाध्य होगा। आज ऐसे अनेक उदाहरण हैं। बाइबल में यहूदा इस्करियोती इसका एक मुख्य उदाहरण है। उसने एक जघन्य अपराध किया था। मेरे प्रियो, मुझे एक अपराध अन्वेषण कर्मी ने बताया कि कभी कभी अपराध वर्षों तक अज्ञात रहता है। अपराधी तक पहुंचने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है। तब अकस्मात ही कोई स्त्री या पुरुष आकर अपना अपराध स्वीकार करता है या करती है। कभी कभी तो वे किसी और अपराध में भी कारावास में होते हैं। वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके मन मस्तिष्क पर अपराध का साया बना रहता है, वह बच नहीं पाता है। परमेश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है कि हम लौटकर उसके पास ही आए। नीति वचन 28 उसके 24 पद में लिखा है, जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। यदि कोई युवक यह सोचे कि उसके पिता की संपत्ति तो उसी की है और उसमें से कुछ ले लेना कोई अपराध नहीं है, तो वह गलत है। परमेश्वर कहता है कि यह अपराध है। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 5 और 6 पद में प्रभु यीशु ने कुर्बान का खंडन करते हुए कहा कि वह परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना है। अपने माता और पिता का आदर कर। आप परमेश्वर को देकर माता पिता को वंचित नहीं कर सकते। अतः आप समझ सकते हैं कि संबंध के कारण अनाधिकृत कुछ ले लेना या अनदेखा करना कैसा आसान होता है, परंतु वह वास्तव में हमारा नहीं है। प्रभु ने इसे दोषी ठहराया था। माता पिता होने के कारण आपको घर में चोरी को अनदेखा नहीं करना है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 28 समाप्त होता है। अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 29 से जारी रखेंगे। नीति वचन 29 उसके 1 पद में लिखा है, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। परमेश्वर अनेक प्रकार से मनुष्य को डांटता है, परंतु मनुष्य फिर भी पाप बार बार करता है। मैंने अनेक मनुष्यों को देखा है कि उन्होंने दंड की पूर्व चेतावनी को अनदेखा किया और अंत में दंड पाया। मैंने एक बार एक दुर्घटनाग्रस्त कार देखी। वह दुर्घटना बहुत ही बुरी थी। जब मैं सेमिनरी में पहुंचा तो मुझे पता चला कि उस कार में स्कूल का एक लड़का और एक लड़की थे। उन्होंने एक और लड़की को अपने साथ बुलाया, परंतु उसने उनके साथ जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह बाइबल अध्ययन कक्षा में जा रही है। उन्होंने उसे बाइबल अध्ययन में पहुंचा दिया, परंतु उसके साथ भीतर नहीं गए। मार्ग में उस लड़की ने उन्हें यीशु के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने प्रभु यीशु को अपना लिया है और उन्हें भी उसकी आवश्यकता है। वे हंसकर चले गए। 5 मिनट के बाद ही वे कार दुर्घटना में मारे गए। मेरे मित्रों, बाइबल में भी इसके अनेक उदाहरण हैं। कोरह, दातान, अबीराम, बेलशस्सर, इजिबेल तथा अन्य और अनेक, जो बार बार डांटे गए फिर भी अपने हट में बने रहे, वह अचानक नष्ट हो जाएगा। कोई भी उपाय काम में नहीं आएगा। नीति वचन 29 उसके 2 पद में लिखा है, जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। मेरे मित्रों, यह तो हम देख ही चुके हैं कि दुष्टों के राज में समस्याओं का समाधान नहीं होता है, परंतु एक ही धर्मी जन संपूर्ण राष्ट्र के लिए आशीष का कारण होता है। आज समस्याओं का समाधान करने का दावा मनुष्य नहीं कर सकता है। हमें ऐसे धर्मी जनों की आवश्यकता है जो किसी भी कीमत पर सच्चाई के लिए खड़े रहे। एक ही धर्मी जन एक दल के बराबर है। जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। नीति वचन 29 के 4 पद में हम पढ़ते हैं, राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। दाऊद एक अच्छा राजा था। वह अपनी प्रजा का एक धर्मी शिरोमणि था। वह परमेश्वर का भय मानकर शासन करता था, परंतु दाऊद ने स्वीकार किया कि उसका परिवार सुदृढ़ नहीं था। केवल प्रभु यीशु ही जो न्याय के द्वारा देश को स्थिर करता है। पृथ्वी पर प्रभु यीशु का दूसरा आगमन ही संसार की आशा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब वह पृथ्वी का न्याय करने के लिए आएगा तब कलीसिया यहां से जा चुकी होगी। यह उसकी प्रतिज्ञा है। आज के शासक घूस लेते हैं, परंतु प्रभु यीशु धार्मिकता के साथ राज्य करेगा। नीति वचन 29 के 5 पद में लिखा है, जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। अच्छा काम करने वाले की प्रशंसा करना उचित ही है। किसी की योग्यता को पहचानना आवश्यक है। किसी की सराहना करना यथा समय उचित होता है। चापलूसी करना तो शहद की अधिकता के समान है। कुछ लोगों को केवल चापलूसी ही पसंद है। वे अपने मन की बात प्रकट नहीं करते हैं। मेरी सेवकाई के समय एक व्यक्ति ऐसा था जो मेरे पास आया और सदैव निवेदन करता और कुछ न कुछ सहायता मांगता रहता था। जब भी उसका फोन आता था वह सबसे पहले कहता था, मैं आपका रेडियो संदेश सुनता हूँ, आप उसको छपवाते क्यों नहीं है? ऐसे संदेश मैंने कभी नहीं सुने। वह जितनी अधिक प्रशंसा करता था उतनी बड़ी सहायता मांगता था। चापलूसी बड़ी खतरनाक होती है। कभी कभी आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। चापलूसी पर विश्वास करना एक त्रासदी है। नीति वचन 29 के 10 पद में लिखा है, हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं और सीधे लोगों के प्राण की खोज करते हैं। मेरे मित्रों, खून के प्यासे मनुष्य के मन में हत्या और घृणा वास करती है। प्रभु यीशु ने कहा कि यदि कोई अपने भाई से घृणा करता है तो वह हत्या का दोषी है। कैन ने हत्या की। हत्या उसके मन में उपजी थी। इससे प्रकट होता है कि मनुष्य कितनी जल्दी और कितनी गहराई में गिर जाता है। याद रखें, परमेश्वर ने आदम और हवा को सिद्धता में बनाया था। पतन के कारण वे संसार में एक पापी को ही जन्म दे पाए थे। उन्होंने अपने ही स्वरूप में पुत्र पुत्रियां उत्पन्न किए थे। उनमें से एक कैन था। वह मन में हत्या लिए हुए जन्मा था। वह अपने ही भाई से घृणा करता था और अंततः उसने उसकी हत्या कर दी। नीति वचन 29 के 11 पद में लिखा है, मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। आप किसी मूर्ख से बात करेंगे तो वह आपको सब कुछ बता देगा। बुद्धिमान मनुष्य भेद छिपा लेता है। वह अपने शब्दों को सोच समझ कर कहता है। तब हम पढ़ते हैं नीति वचन 29 के 12 पद में, जब हाकिम झूठी बात की ओर कान लगाता है तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। माता पिता को संतान के अनुशासन में अपना उदाहरण रखना है, क्योंकि वे उनकी नकल करते हैं। इसी प्रकार यथा राजा तथा प्रजा, शासक का आचरण प्रजा द्वारा प्रकट होता है। यहाँ यही बात दर्शाया गया है। नीति वचन 29 के 17 पद में हम पढ़ते हैं, अपने बेटी की ताड़ना कर तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। यहाँ फिर अनुशासन की बात की गई है। तब हम नीति वचन 29 के 18 पद में देखते हैं, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। दर्शन अर्थात आत्मिक समझ, विश्वासी के मन में पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन की समझ उत्पन्न करता है। पहला शमूएल की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। दर्शन की कमी के कारण, वचन की समझ की कमी के कारण परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। अतः परमेश्वर ने शमूएल नबी को उभारा कि यह कमी पूरी करे। कुछ लोगों की भविष्यवाणी के कारण यहोशू परेशान था, परंतु मूसा ने कहा गिनती की पुस्तक 11 अध्याय उसके 29 पद में, भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सभों में समवा देता। मेरे मित्रों, आत्मिक बुद्धि कलीसिया के लिए परमेश्वर का वरदान है, अर्थात परमेश्वर से प्राप्त वचन की समझ। हिजकिया के सेवकों द्वारा संकलित नीति वचनों अर्थात सुलेमान के वचनों का अब समापन होता है, परंतु मैं तो यह मानता हूं कि नीति वचनों का अंतिम अध्याय भी सुलेमान के नीति वचन है, अर्थात वह राजा लमुएल के हैं। मेरे मित्रों, आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने फिर से नीति वचन की पुस्तक में से आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है और आपने अपने जीवन में एक सही निर्णय भी लिया है। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
करते हम